एक और खूबसूरत सूरत, सूरत तुहा। इस सूरत की बड़ी खूबियां अभी सिर्फ इतना ही सुन लें कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो इस सूरत की आयतों को सुनकर ईमान लाए थे। शायद आज हम में से भी किसी का दिल ईमान ले आए। शौरी ईमान, वो तो कुफर से इस्लाम की तरफ आए थे, हम रस्मी ईमान से शौरी ईमान पे आ जाएं। हजरत मूसा का किस्सा बड़ी तफसील से आप पढ़ेंगे इसमें, और अल्लाह ताला जितनी भी बात जो हमसे कहलवाएगा उसको इंशाल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहा मानजलना अलैकल कुरआन लितशका। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तौहा, हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक्कत में पड़ जाए, बल्कि इसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह से डरता है। इसका उतारना उसकी तरफ से है जिसने जमीन को और बुलंद आसमानों को पैदा किया। अर रहमान अलल अर्श इस्तवा, जो रहमान है अर्श पर कायम है, जिसकी मलकियत आसमानों और जमीन और इन दोनों के दरमियान और कुर्रे खाक के नीचे की हर चीज पर है। ये है आयत नंबर 1 से 6, 1-6। इसका उन्वान है, ये कुरान मुश्किल में नहीं डालता, इसके बरक्स कुछ लोग सोचते हैं। ये बड़ा प्यारा कुरान है, सिर्फ यह है कि जब इसको अपनी दिल की खुशी बना लिया जाए तो ये खुशी फिर इंसान को महसूस होने लगती है। वह इंतजर बिलकउल, अगर तू ऊंची बात कहे तो वो तो हर एक पोशीदा बल्कि पोशीदा से पोशीदा तर चीज को भी बखूबी जानता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूत नहीं, बेहतरीन नाम उसी के हैं। ये है आयत नंबर 7 से 8, 7-8। इसका उनवान है, ऊंची पुकारो या चुपके से पुकारो, वो दोनों को सुनता है। जैसा दिल हो, जैसा वक्त हो, वैसे बात करें। कभी आंसू निकलें तो निकलने दें, कभी आवाज़ ऊंची हो तो आने दें, कभी तड़प हो तो तड़पें, और कभी चुपके चुपके उससे बातें करें तो करते रहें, वो हर हाल में सुनता है। वह लता का हदीस मूसा, तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी मालूम है, जबकि इसने आग देखकर अपने घर वालों से कहा कि तुम जरा सी देर ठहर जाओ, मुझे आग दिखाई दी, बहुत मुमकिन है मैं इसका कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊं या आग के पास से रास्ते की इत्तला पाऊं। जब वो वहां पहुंचे तो आवाज दी गई, है मूसा यकीनन मैं ही तेरा परवरदिगार हूँ। इन्नी अना रब्बुक, तू अपनी जूतियां उतार दे क्योंकि तू पाक मैदान तुबा में है और मैंने तुझको मुंतखब कर लिया। अब जो वही किया जाए उसे कान लगा कर सुन, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा इबादत के लायक और कोई नहीं, बस तू मेरी ही इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। ये थी आयत नंबर 9 से 14, 9-14। इसका उन्वान लिखिए कि मूसा कलीमुल्ला बनते हैं। ये पहला मौका था जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने कलाम किया। मदियन से मिस्र आ रहे थे, तफसील से इनकी कहानी सूरह कसस में आप पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे। यहाँ पहली बात यह है कि घर वालों की जरूरियात को पूरा करना मर्द की जिम्मेदारी है। बीवी बच्चे साथ थे, दूर आग दिखी, मूसा बीवी को कह रहे हैं तुम रुको मैं आग लेके आता हूँ। और आज के मॉडर्न हस्बैंड होते तो क्या कहते, जरा बेगम जाइए आप और साथ चाय पत्ती भी ले आइएगा। ख्वातीन ने अपने सारे हक छोड़ दिए, और मर्द बहुत खुश हैं आज के दौर में कि ख्वातीन वो काम भी कर रही हैं जो उनके जिम्मे नहीं थे। दूसरी चीज इस हिस्से में समझ आती है जिसको हाईलाइट करना है, वो क्या है कि फाबुतनी व अकीमिस्सलात लिज़िक्री, इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो। ये है नमाज का असल थीम कि नमाज पढ़ने से अल्लाह की याद आनी चाहिए। आप देखिए कि हम नमाजें पढ़ते हैं लेकिन नमाजें मुर्दा नमाजें हैं। हदीस में नमाज को नूर कहा गया। आप कहीं बल्ब जलाएं और रोशनी ना हो तो इसका क्या मतलब है कि पीछे से कनेक्शन टूटा हुआ है, तार टूटे हुए हैं। इसी तरह जब बंदा नमाज पढ़े और अल्लाह के साथ ताल्लुक जुड़ के उसकी जिंदगी में रोशनियां ना आए तो समझ लीजिए कि अल्लाह की याद का तार टूटा हुआ है। अपनी नमाजों को जिंदा करने की जरूरत है। जितनी नमाज जिंदा होती है उतना अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक जिंदा होने लगता है। अल्लाह ताला हमारी नमाजों को जिंदा कर दे। इन्न सात आतियतुन, कयामत यकीनन आने वाली है जिसे मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जो इसने कोशिश की हो, बस अब इसके यकीन से तुझे कोई ऐसा शख्स रोक ना दे जो इस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हो, वरना तू हलाक हो जाएगा। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे इस दाएं हाथ में क्या है? जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और जिससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लिया करता हूँ। और भी इसमें बहुत से फायदे हैं। फरमाया है, मूसा इसे हाथ से नीचे डाल दे। डालते ही वो सांप बनकर दौड़ने लगी। फरमाया, बेखौफ होकर इसे पकड़ ले, हम इसे इस पहली सी सूरत में दोबारा ला देंगे। और अपना हाथ अपनी बगल में डाल ले तो वो सफेद चमकता हुआ होकर निकलेगा, लेकिन बगैर किसी ऐब और रोग के। ये दूसरा मुजजा है, ये इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। ये है आयत नंबर 15 से 23, 15 to 23। इनका उन्वान लिखिए, मूसा का इम्तिहान। बहुत ही खूबसूरत पैगाम था इसमें हमारे लिए कि मूसा ने कहा कि ये मेरा असा है, मैं इससे टेक लगाता हूँ और पत्ते झाड़ता हूँ। जरूरत की चीज थी ना, मूसा के लिए नेसेसिटी थी, उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। अल्लाह ने कहा, छोड़ो छोड़ो फेंको इसको। मूसा ने कहा, अच्छा ठीक है फेंक देता हूँ। जब नीचे गया तो सांप बन के दौड़ने लगा, खौफ आने लगा, कहा पकड़ो इसको। ये मूसा का इम्तिहान नहीं था, ये आज भी हम सब का इम्तिहान है। वो चीजें जिनको हम सीने से लगाए रहते हैं ना हर लम्हे, कि बस इनके बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं हो सकता, बास दफा अल्लाह के हुक्म पर उसको छोड़ना पड़ता है। और वो चीजें जो हमें दौड़ते हुए सांप दिखते हैं ना, कि नहीं ये बड़े मुश्किल हुक्म है दीन के, उनको पकड़ना पड़ता है। और हमें नहीं पता कि वो चीज जिसको हमने आज छोड़ा हुआ है ये सोच के कि ये सांप है, और वो हमारे हाथ में आते ही वो असा बन के हमें सहारा देने लगे। एक ईमान वाले की जिंदगी में अल्लाह के हुक्म की इतनी अहमियत है जितनी मूसा की जिंदगी में थी। हम चीज़ों को पकड़ते, हम कहते नहीं ये मैं इसके बगैर रह नहीं सकती, नो इज़ नॉट पॉसिबल, आज के दौर में नहीं रह सकती ये, आज की दौर ये वो। अल्लाह ताला कहते फेंक के तो देखो, फेंकने की देर होती है बस, अल्लाह ताला उसकी शक्ल बदल देता है। ये इम्तिहान है। और मूसा का इम्तिहान कितना सख्त था कि जिंदा सांप पकड़ना पड़ा। जरा हमें कोई कहे ये सांप है, पकड़ो पकड़ो इसको, देखना ये भी ऐसा बन जाएगा, तो हाल है पकड़ेंगे हम? कहे जो मर्जी, हम तो आर्टिफिशियल सांप ना पकड़े। अल्लाह के हुक्मों पे वो हुक्म भी पकड़ने पड़ते हैं जो वाकई बंदे को सांप लग रहे होते हैं। फिर अल्लाह के वादे भी तो ऐसे ही लोगों के साथ सच्चे होते हैं। इसहब इला फिरौन इन्नहु तगा, अब तो फिरौन की तरफ जा, इसने बहुत सरकशी मचा रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरे परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी जुबान की गिराबी खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ जाएं। काला रब इशरहली सदरी व यस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली वजल्ली वजीरम मिन अहली, और मेरा वजीर मेरे कुंबे में से कर दे, यानी मेरे भाई हारून को। तू इससे मेरी कमर कस दे और इससे मेरा शरीके कार कर दे ताकि हम दोनों बकसरत तेरी तस्बीह करें और बकसरत तेरी याद करें। बेशक तू हमें खूब देखने भालने वाला है। जनाबे बारी ताला ने फरमाया, मूसा तेरे तमाम सवालात पूरे कर दिए गए। ये थी आयत नंबर 24 से 36, 24 to 36। इसका उनवान लिखिए, घर वालों का साथ मिल जाए तो काम आसान हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे। सीने का खुलना क्या होता है कि उस पैगाम की असल को ले ले। सारी नजर जब इस बात पे होती है ना कि यफ़क़हू क़ौली, कि लोग मेरी बात को समझ लें, तो फिर अल्लाह की तरफ बुलाने वाला इस बात की ज्यादा फिक्र करता है कि लोगों को बात समझ आ रही है, इससे ज्यादा कि वो कितने भारी भरकम लफ्ज बोल रहा है। हजरत मूसा ने अपने भाई हजरत हारून का साथ मांगा। क्यों? क्योंकि जब दीन के रास्ते में आपको अपने घर वालों और अपने साथ वालों का साथ मिल जाता है ना, तो काम आसान होता है। क्यों? कि जब आप अपने साथियों को साथ लेके नहीं चलते ना, तो आपका अपना दीन भी रिस्क में है। आप तो बड़े ईमान से भरे हुए उठ के जाएंगे, आप उनको कोई बात बताएंगे ना, वो कहेंगे अरे छोड़ो बैठो, क्या किन बातों में आगे, चलो आओ वहां चलते हैं, ईद की चूड़ियां लेके आते हैं। आपका अपना ईमान खतरे में पड़ता है। एक बहुत खूबसूरत टिप है इसमें कि अगर हम अपने दीन के सफर को स्ट्रॉन्ग और मजबूत और कंफर्म करना चाहते हैं ना, तो अपने साथ घर वालों को ले आए, दोस्तों को ले आए। हर वो बंदा जिसके असर में हम बहुत ज्यादा रहते हैं ना, उस बंदे को अपने साथ मिलाए। आप देखिएगा कि 1 अकेला 2 11, इसी से आप ये टॉपिक भी रख सकते हैं, 1 अकेला 2 11। और दिल खुला होता है ना, तो बंदा अपने भाई बहनों के लिए और दूसरे रिश्तेदारों के लिए वही चीज मांगता है जो अपने लिए मांगता है। ये इनकी शरह सदर थी। रिवायात में आता है कि किसी भाई ने अगर दुनिया में आज तक किसी को फायदा दिया ना, तो सबसे ज्यादा मूसा ने दिया है, क्योंकि दुनिया के किसी भाई ने अपने भाई को नबूवत नहीं लेके दी, और मूसा की फरमाइश पे हजरत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली थी। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह सबके घर वालों को उनका दीन के अंदर मुआविन बना दे। वलकद मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा, हमने तो तुझ पर एक बार और भी एहसान किया है, जबकि हमने तेरी माँ को वो इल्हाम किया जिसका जिक्र अब किया जा रहा है कि तू इसे संदूक में बंद करके दरिया में छोड़ दे। बस दरिया इसे किनारे ला डालेगा और मेरा और खुद इसका दुश्मन इसको ले लेगा। और मैंने अपनी तरफ से खास मोहब्बत और मकबूलियत तुझ पर डाल दी ताकि तेरी परवरिश मेरी आंखों के सामने की जाए। आयत नंबर 37 से 39, 37 से 39, इसका अनवान लिखिए उम्मे मूसा का इम्तिहान। हम बातें तो पढ़ते हैं लेकिन अपने ऊपर लेके तो सोचिए, एक माँ का इससे बड़ा इम्तिहान क्या होगा कि अपने नौमलूद बच्चे को दरिया में डाल दो। आज की माँ होती तो कहती, नहीं मैं अपने पास रखूंगी, मैं बचा लूंगी, दरिया में क्यों डालूं। उम्मे मूसा ने अपने बच्चे को दरिया में डाला। आज की माँ अपने बच्चे को अल्लाह के रास्ते में नहीं छोड़ पाती कि ये पीछे रह जाएगा। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को एहसान याद दिला रहा है। अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत डाल दी थी हजरत मूसा के बारे में दिलों में कि जो देखता था उसको इनसे मोहब्बत होने लगती थी। अब मूसा का एक नया सफर शुरू हो रहा है। इस तमशियोख तुक, याद करो जब तुम्हारी बहन चल रही थी और कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं इसे बता दूं जो इसकी निगहबानी करे, इस तदबीर से हमने तुझे अपनी माँ के पास पहुँचाया कि इसकी आंखें ठंडी रहें और वो गमगीन ना हो। और तूने एक शख्स को मार डाला था, इस पर भी हमने तुझे गम से बचा लिया। गरज हमने तुझे अच्छी तरह आजमा लिया, फिर तू कई साल तक मदियन के लोगों में ठहरा रहा, फिर तकदीर इलाही के मुताबिक ऐ मूसा तू आया। अब मैंने तुझे खास अपनी जात के लिए पसंद कर लिया। आयत नंबर 40 से 41, इसको अनवान लिखिए अल्लाह के चुनने के अनोखे तरीके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी आजमाइशों की जिंदगी लगती है। लोग तो बड़े हो के आजमाए जाते हैं ना, मूसा बचपन में ही आजमाए गए। 3-4 दिन का बच्चा या कुछ दिन का बच्चा माँ की गोद से जुदा कर दिया जाए, अल्लाह ताला उसको वहाँ पहुँचा दे जहाँ दुश्मन उसकी जान लेने के दर पे है। और अल्लाह ताला मूसा की माँ के साथ वादों को कैसे सच्चा करता है। उस माँ ने अल्लाह के वादे को सच समझते हुए बच्चे को समंदर में डाला, अल्लाह ने बच्चा वापस दिला दिया। जब फिरौन के महल के पास बच्चा निकला, लोगों ने उठाया, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। हजरत आसिया ने कहा कि हम इसको बच्चा बना लेते हैं, रख लेते हैं। उस वक्त भी फिरौन ने चाहा कि इस बच्चे को मार दूं कि ये वही बच्चा ना हो जिसके बारे में ख्वाब देखा गया कि ये मेरी सल्तनत को खत्म करेगा, लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने तो रोना धोना डाल दिया, रो रो के सारा महल सर पे उठा लिया, दूध ही नहीं पी रहे किसी का। कहते 3 दिन तक किसी का दूध ही नहीं पिया क्योंकि उनको तो माँ का पीना था। अब फिरौन की मजबूरी बन गई थी मूसा की माँ। बहन ने कहा अच्छा एक औरत है शायद उसका पी ले, कहा चलो। सारे शहर से औरतें ट्राई की जा रही थी, जो ही उम्मे मूसा आई उन्होंने दूध पिलाया तो मूसा सलाम ने पी लिया। अच्छा चलो इस औरत को बुलाओ, इधर ही रहे, इस बच्चे को पाले। कहेंगे मैं नहीं इधर रहती, तुम्हारी मजबूरी है देना है तो बच्चा मुझे दो, मैं अपने घर ले जाऊंगी, मेरे और भी बच्चे हैं। कहा अच्छा चलो ले जाओ। अब मूसा वापिस अपनी माँ के साथ, और मूसा को जो तोहफे शाही हाल से आते बड़े बड़े ऊंटों पे सामान आता, और मूसा की माँ के बच्चे भी पलने लगे और मूसा भी पलने लगे। ये है अल्लाह के वादे, अल्लाह के नबी की एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है। आपने फरमाया कि एक सच्चे मोमिन की मिसाल तो उम्मे मूसा की है, अपने ही बच्चे को दूध पिलाए और उजरत भी ले। अल्लाह की कसम, अल्लाह के ये वादे हैं। कभी किसी माँ को अपने बच्चे का दूध पिलाने के पैसे नहीं मिले होंगे, उम्मे मूसा को ये भी मिले। क्यों? अल्लाह के वादों पर एतबार किया। मोमिन जो नेकियां करता है ना, दुनिया में उसकी हालत ऐसी है कि उसको दुनिया में उसका रिटर्न मिल रहा है, आखिरत में जन्नत तो महफूज है, दुनिया में अल्लाह ताला उसको उम्मे मूसा की तरह एक मुतमईन जगह पे रखता है। फिर आप देखिए कि मूसा को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने तुझे इतने मरहलों से गुजारा। अब ये सारे मरहले जाहिर कितने तकलीफ दे लग रहे हैं ना, हाय बच्चा, हाय माँ से जुदा हो गया, हाय दुश्मन, हाय दुश्मन, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी तैयारियां थी। अल्लाह मूसा को उस महल के अंदर आना जाना सिखा रहे थे, अल्लाह ताला चाहते थे कि कल ये फिरौन के सामने जब आके तबलीग करें तो इनको कुछ इनके अदब अदाब शाही तौर तरीके आते हो। जिंदगी में कभी भी आपके ऊपर कोई आजमाइश आए, इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें आएंगी, आपकी चीखें निकलेंगी, सिर्फ एक काम कर लें कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, ए अल्लाह तेरे रब होने पर राजी। और अगर आप अल्लाह के लिए सब्र कर जाएंगे ना तो अल्लाह आपको फिर वो सब वापस लौटा देगा। गिन गिन के लें, एक के बदले में 10-10 गिन के लें, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, अल्लाह ताला देते देते नहीं थकेगा। लेकिन जो अल्लाह के दिए हुए गमों को कबूल नहीं करते ना खुशियों से, फिर ऐसे लोग अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने फैसलों पर राजी होने वाला बना दे। वस्तना तुकली नफसी, और मैंने तुझे खास अपनी जात के लिए पसंद फरमा लिया। ये होता है अल्लाह का चुनाव। एक पूरा टॉपिक है इस पे हमारे पास, आजमाइश और ईमान का ताल्लुक, ये उसी में से है। जो हम पे आजमाइशें आती हैं ना, ये हमारे ईमान के मुवाफिक आती हैं। जितना ईमान ज्यादा होता है ना उतनी आजमाइश बड़ी होती है, और जितनी आजमाइश बड़ी होती है इंशाल्लाह उतना ही फिर उसका अजर भी बड़ा होता है। वस्तनातुक लिनफ्सी, मैंने तुझे खास अपनी जात के लिए पसंद कर लिया। अल्लाह के चुनाव के तरीके फर्क है बंदों के तरीकों से। अब तो अपने भाई समेत मेरी निशानियां अपने साथ लिए हुए जा, और खबरदार मेरे जिक्र में सुस्ती ना करना। तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, इसने बड़ी सरकशी की है, इसे नरमी से समझाओ। नोट कीजिएगा, फिरौन को समझाना है, और नरमी से। हम आज मुसलमानों के साथ नरमी से बात नहीं करते कि शायद वो समझ ले या डर जाए। दोनों ने कहा है, हमारे रब, हमें खौफ है कि कहीं फिरौन हम पर कोई ज्यादती ना करे या अपनी सरकशी में भड़ ना जाए। जवाब मिला, तुम बिल्कुल खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सुनता देखता रहूंगा। तुम इसके पास जाकर कहो कि हम तेरे परवरदिगार के पैगंबर हैं, हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे, इनकी सजाएं मौकूफ कर दे, यानी खत्म कर दे। हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं, और सलामती उसी के लिए है जो हिदायत का पाबंद बन जाए। हमारी तरफ वही की गई कि जो झुटलाए और उगरदानी करे उसके लिए अजाब है। फिरौन ने पूछा, ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर एक को इसकी खास सूरत शक्ल अनायत फरमाई, फिर राह सुझा दी। इसने कहा, अच्छा ये तो बताओ अगले जमाने वालों का हाल क्या होना है? जवाब दिए, इनका इल्म मेरे रब के हाँ किताब में मौजूद है। ना तो मेरा रब गलती करता है ना भूलता है। इसी ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया, और इसमें तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाए, और आसमान से पानी भी वही बरसाता है। फिर इस बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार हम ही करते हैं। तुम खुद खाओ और अपने चौपाओं को भी चुराओ। कुछ शक नहीं कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। ये है आयत नंबर 41 से 54, 41-54। इसका अनवान लिखेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन को तबलीग करना शऊर को बेदार करने के अंदाज से। इन आयात पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस खूबसूरत तरीके से फिरौन को तबलीग की, उसने उनको उलझाना चाहा, बड़ों का हाल पूछा। आज भी ये जुमला लोग बोलते हैं, अच्छा ये बताओ कि हमारे बड़े क्या गुमराह थे? क्या उनको नहीं पता था? क्या वो ठीक जगह पे नहीं थे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ यही कुछ बता दिया कि जो बंदा अल्लाह के वादों पर यकीन करेगा उसको फिर खुद बखुद हिदायत मिल जाएगी। और इससे तबलीग का एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता मिला कि हमेशा फोकस्ड होकर तबलीग करें। जब बहुत छोटी छोटी बात को इधर उधर उलझा दिया जाता है, तो बाज दफा तबलीग जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें भी सही मानों में बात पहुंचाने वाला बना दे, और लोगों को अपनी गलत तबलीग की वजह से या अपनी सख्ती की वजह से या शिद्दत पसंदी की वजह से हम दीन से दूर ना कर दें। आयत 53 से देखेंगे दोबारा, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ध महदं वसलक लकुम फीहा सुबुला, उसी ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और इसमें तुम्हारे चलने के रास्ते बनाए हैं, और आसमान से पानी भी वही बरसाता है, फिर इस बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार भी हम ही करते हैं। तुम खुद खाओ और अपने चौपाओं को भी चराओ। कुछ शक नहीं कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी जमीन में से हमने तुमको पैदा किया और इसी में फिर वापस लौट आएंगे, और इसी से फिर दोबारा तुम सबको निकाल खड़ा करेंगे। हमने इसे अपनी सब निशानियां दिखा दी, लेकिन फिर भी इसने झुठलाया और इनकार किया। ये थी आयत नंबर 53 से 56। इसका अनवान लिखिएगा, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। मूसा और फिरौन के तस्करे के बीच में इस आयत का आना एक बहुत बड़ी हिकमत का तकाजा था, और वो क्या कि इंसान को उसका इंजाम याद दिलाया जाए। अगर हम इस हिस्से को हाईलाइट कर लें कि मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी से निकले, इसी मिट्टी में जाना है, ये कितनी बड़ी कुदरत है अल्लाह ताला की कि इंसान जिस चीज़ से बना था वापस उसी मिट्टी के सुपुर्द कर दिया जाता है। अगर हमें अपना ये इंजाम याद रहे तो कभी भी हम अपने पाँव पे मट्टी का लगना नाकाबिले बर्दाश्त ना समझें, और कभी हमारी गर्दन अकड़ के आसमानों की तरफ ना उठे। अगर दिन में चंद बार ही इस चीज़ का तसव्वुर दिल में आ जाए कि एक दिन ऐसा मेरी ज़िंदगी में आएगा कि मैं इस ज़मीन के ऊपर की बजाय इसके पेट में होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई फौत हो जाता था तो 3 लपे उसकी कब्र के ऊपर डाला करते थे। ये क्या साबित करता है कि इस इंसान का यही आगाज़ था और यही इसकी इंतहा है। अल्लाह ताला हमें उस वक्त की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वलकद अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फकज़्ज़ब व अबा, हमने इसे अपनी सब निशानियां दिखा दी, लेकिन फिर भी इसने झुटलाया और इनकार किया। कहने लगा है मूसा, क्या तू इसीलिए आया है कि मैं अपने जादू के जोर से मुल्क से बाहर निकाल दे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में इस जैसा जादू जरूर लाएंगे। बस तो हमारे और अपने दरमियान एक वादे का वक्त मुकर्रर कर ले कि न हम इसका खिलाफ करें और न तू, साफ मैदान में मुकाबला हो। मूसा ने जवाब दिया कि जीनत और जश्न के दिन का वादा है और ये के लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाए। बस फिरौन लौट गया और इसने अपने हथकंडे जमा किए, फिर आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम्हारी शामत आ चुकी, अल्लाह ताला पर झूठ और इफ्तरा ना बांधो, वो तुम्हें अजाबों से मलिया मेट कर दे। याद रखो, वो कभी कामयाब नहीं होता जिसने झूठी बात कड़ी। बस ये लोग आपस के मशवरों में मुख्तलिफ राय हो गए और छुप छुप कर चुपके चुपके मशवरा करने लगे। कहने लगे, ये दोनों महज जादूगर हैं और इनका पुख्ता इरादा है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें और तुम्हारे बेहतरीन मजहब को बर्बाद करें। तो तुम भी अपना कोई दाव उठा ना रखो, फिर सफ बंदी करके आओ। जो आज गालिब आ गया वही बाजी ले गया। कहने लगे, ए मूसा, या तो तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाएं। जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम को यह ख्याल गुजरने लगा कि इनकी रस्सियां और लकड़ियां इनके जादू के जोर से भाग दौड़ रही हैं। बस मूसा ने अपने दिल ही दिल में डर महसूस किया। हमने फरमाया, ला तखफ, कुछ खौफ ना करो, तू ही गालिब और बरतर है, और तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दे कि इसकी तमाम कारीगरी को वो निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है वो सिर्फ जादूगरों के कर्तव्य हैं, और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता। पौल की यसहरतु सज्जदा कालू आमन्ना बि रब्बी मूसा व हारून। अब तो तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे कि हम तो हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। फिरौन कहने लगा, क्या मेरी इजाजत से पहले ही तुम इस पर ईमान ले आए? यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा बुजुर्ग है जिसने तुम सबको जादू सिखाया। सुन लो, मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टे सीधे कटवा कर तुम सबको खजूर के तनों में सूली पर लटकवा दूंगा, और तुम्हें पूरी तरह मालूम हो जाएगा कि हम में से किसकी मार ज्यादा सख्त और देरपा है। उन्होंने जवाब दिया कि नामुमकिन है कि हम तुझे तरजीह दें इन दलीलों पर जो हमारे सामने आ चुकी और उस अल्लाह पर जिसने हमें पैदा किया। अब तो तू जो कुछ करने वाला है कर गुजर, तू जो कुछ भी हुक्म चला सकता है वो इसी दुनिया की जिंदगी ही में तो है। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फिर लना खताया। हम इस उम्मीद से अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए कि वो हमारी खताएं माफ फरमा दे, और खास कर जादूगरी का गुनाह जिस पर तुमने हमको मजबूर किया। अल्लाह ही बेहतर और बाकी रहने वाला है। ये थी आयत नंबर 56 से 73, 56 से 73। इसका उन्वान हम लिखेंगे, शौरी और रिवाजी ईमान का फर्क। मूसा अलैहिस्सलाम ने सबके सामने अपना मोजज़ा दिखाया। जादूगरों की जो लाठियां थी वो सबके सामने अजदहे का नवाला बन गईं, लेकिन वो बात जो दूसरों को समझ ना आई वो जादूगरों को समझ क्यों आ गई? इसलिए कि वो इल्म वाले थे। जो शख्स इल्म से ताल्लुक रखता है वो दूसरे इल्म वाले की बात को जल्दी समझता है। मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का ये मामला जो हम सब के लिए बहुत सारे सबक अपने अंदर रखता है कि जब सच्चा ईमान इंसान के अंदर आने लगता है तो उस वक्त वो अपने वक्त के फिरौन से नहीं डरता। हर दौर में यही कहानी रही, लोग जब दलील के मैदान में मात खा जाते हैं तो उस वक्त फिर वो जुल्म और सितम करने लगते हैं। कल फिरौन ने भी यही गलती की, आज के लोगों की भी यही गलती है कि वो ऐसी चीजों से लोगों को मनवाना चाहते हैं कि जिसका नाम जुल्म और सितम है। हम सब के लिए इसमें अमल की बात जो बनती है वो यही है कि हम सब अपने ईमान का जायजा लें। पुरानी चीज बहुत अरसा एक जगह पड़ी रहे तो बाज दफा उसको घुन भी लग जाता है। क्या हमारे ईमान पुराने तो नहीं हो चुके? क्या हम मुसलमान सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि हम मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा हो गए? क्या हमने अपने ईमान को थोड़ी सी हवा लगाई? और ये हवा कब लगती है? जब इस ईमान का इजहार किया जाता है। वो ईमान जो बंदे के दिल के अंदर रहे वो अपनी मौत आप मर जाता है। ईमान हमेशा इजहार चाहता है, और ईमान का इजहार उस ईमान के पौधे को और ज्यादा ऑक्सीजन देता है। जितना ईमान बाहर निकलता है उतनी इसकी जड़ें अंदर आने लगती हैं। बस दफा लोग ये मुगालता देने लगते हैं, मैं दिल से तो बहुत ईमान वाली हूँ, आपको क्या पता मैं अंदर से कैसी हूँ, और मैं तो इतनी नेक हूँ, आप क्या फर्क पड़ता है अगर मेरे जाहिर से ये नहीं दिखता? तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी, आप शायद उससे बात को मजीद समझ सकें कि अगर एक बच्चा अपनी माँ से ये कहे कि मुझे बुखार है और माँ जब उसके जिस्म को हाथ लगाए तो जिस्म ठंडा है, मानेगी? कभी भी नहीं मानेगी। इसी तरह याद रखिए कि एक बुखार अंदर आए तो उसका असर जिस्म पे दिखता है, ईमान की हरारत तो इससे बहुत ज्यादा होती है। जिस तरह बुखार वाले का जिस्म तपने लगता है, उसकी आंखों के अंदर एक किस्म की सुर्खी आने लगती है, उसके कान गर्म होने लगते हैं, इसी तरह सच्चा ईमान जब दिल में दबा दिया जाता है तो वो भी ऐसा ही इजहार चाहता है। उसका भी दिल चाहता है कि मैं चेहरे से दिखूं, मैं कानों से दिखूं, मैं जुबान से दिखूं, मैं आंखों से दिखूं। सिर्फ दिल के ईमान वाला होने से बात नहीं बनती, जब तक आंखें, कान, दिल, सारा कुछ मुसलमान नहीं हो जाता। और जब ऐसा ईमान आता है तो फिर इंसान किसी की परवाह नहीं करता। जब नस्ली और रस्मी ईमान असल शौरी ईमान में बदलता है, इंसान के लिए ये एक दरियाफ्त होती है, कुछ पाने का एहसास, मैंने कुछ पा लिया। फिर वो किसी और ही ख्यालों में रहता है। दुनिया में किसी को किसी से बातिल मोहब्बत ही क्यों ना हो, चले बीवी को शादी के बाद जो शोहर से मोहब्बत महसूस होती है, सिर्फ उसी को तसव्वुर में लाइए कैसे वो दिन होते हैं। ऐसे लगता है कि दुनिया के किसी इंसान से कोई ताल्लुक ही नहीं, वो जिन्होंने इतने साल पाला पोसा कई के दिन तक उनका ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि मोहब्बत हुई, उस मोहब्बत ने दूसरों से बेनियाज कर दिया। ये तो एक इंसान की, एक इंसान के लिए मोहब्बत थी। जब अल्लाह से बंदे को मोहब्बत होती है तो हकीकत यह है कि फिर उसके निगाहों में दूसरे सिर्फ मोहरे रह जाते, वो सोचता है कि असल तो मेरा ताल्लुक उनके साथ है, असल तो वो जात है कि जिसको मैंने खुश करना है। अब देखिए कि बीवी की हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो अपने शोहर को खुश करे, उसके घर वाले ना खुश हैं तो उसको परवाह नहीं, उसके दोस्त नहीं उससे खुश, उसकी दोस्तें नहीं खुश तो वो फिर भी परवाह नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि मेरी अब सारी प्रायोरिटी मेरा शोहर है। इसी तरह इस बात को जरा और बढ़ा लीजिए, जिस बंदे को अपने रब की मार्फत होने लगती है वो हर लम्हे इसी बात की फिक्र में रहता है कि मैं जो करने लगा हूँ इससे मेरा रब खुश है कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ क्या मेरा रब इससे नाराज तो नहीं होगा, मेरे रब को मेरी इस वक्त जरूरत है या दूसरों को जरूरत है। और इस तरह फिर इंसान एक नई दुनिया में चला जाता है कि जिसको फिर इस दुनिया की जन्नत कहते हैं। ईमान की सूरत में दुनिया में आमाल सालेह का जो बाग लगता है ना, वो इसी किस्म का बाग होता है कि जो बंदे को अल्लाह की निगाहों में खिलखिला देता है। फिर वो अकेले में मुस्कुराता है, कभी अकेले में रोता है, कभी अल्लाह की रहमत याद आती है तो हंसने लगता है, कभी उसके अजाब याद आते हैं तो रोने लगता है। और अल ईमान उबैन अल खौफ वर रिजा वाली कैफियत होती है कि ईमान खौफ और उम्मीद का नाम है। फिर इंसान इस बात से नहीं डरता कि उसको खौफ आता है, उसको कोई अल्लाह जालिम और जाबिर शख्सियत नहीं दिखता, वो अल्लाह की नाराजगी से डरता है। जैसे कोई बीवी शौहर से ना भी डरे लेकिन उसकी नाराजगी से जरूर डरती है। अगर हम सब का ईमान इस दर्जे का नहीं है तो फिर दोबारा दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सच्चे दिल से ईमान दे, और शौर के साथ फिर कलमा पढ़ने की जरूरत है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि वापसी का सफर उस जात की तरफ है जिसकी तरफ जाने वाले दो तरह के होते हैं। कैसे? इन्नहु मैयाति रब्बहु मुजरिमन फइन्न लहू जहन्नम। बात यही है कि जो भी गुनाहगार बनकर अल्लाह के यहाँ हाजिर होगा उसके लिए दोजख है, जहाँ ना मौत होगी और ना जिंदगी। और जो भी इसके पास ईमान की हालत में हाजिर होगा और इसने अमाल भी नेक किए होंगे, इनके लिए बुलंदो बाला दर्जे हैं। जन्नात उदन तजरी मिन तहतिहल अनहार, हमेश की वाली जन्नतें जिनके नीचे नहरें लहरें ले रही हैं, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे, यही इनाम है हर उस शख्स का जो पाक हुआ। ये है आयत नंबर 74 से 76, 74 to 76। इसका उन्वान है दो किस्म की वापसी। यहाँ मुजरिम के मुकाबले में तस्किया करने वाले शख्स की बात है। हर एक ने जन्नत या जहन्नम का राही बनना है। इस दुनिया से जाने के बाद हम सब की वापसी अल्लाह की तरफ है। एक शख्स मुजरिम बनकर जाएगा। क्या मतलब है मुजरिम बनने से? मुजरिम बनने से मुराद क्या है कि किसी इंसान के सामने अल्लाह की कोई निशानी आए, उसे कोई नसीहत की जाए, उसके सामने दलाइल पेश किए जाएं लेकिन वो इसको नजरअंदाज कर दे, उसके सामने हक की दावत रखी जाए लेकिन उसको कबूल करने से अपने आप को रोक ले। ऐसा शख्स जो अपनी जाहरी कुव्वतों और अपनी मादी मसलियतों से बाहर ना निकल सके और उस बड़ी हकीकत का एतराफ़ ना कर सके, अल्लाह की निगाह में ये मुजरिम होना है। दुनिया में आप देखते हैं कि लॉस होते हैं, अगर आपने इससे ज्यादा स्पीड की तो आप मुजरिम बन जाएंगे, अगर आपने रेड लाइट को ब्रेक करके आगे निकल गए तो आप मुजरिम हैं। यानी दुनिया के क्राइम्स और क्रिमिनल्स की तफसील जिस तरह होती है, इसी तरह अल्लाह ताला ने भी एक किताब ऐसी बना रखी है कि जिसमें कुछ लोग मुजरिम हैं और कुछ लोग रूल्स को ओबे करने वाले हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो रूल्स को ओबे करें और वो लोग जो रूल्स को ब्रेक करें कभी एक जगह नहीं करेगा। लेकिन अफसोस ये कि खास तौर पर आज हम मुसलमानों का ये मेयार बन चुका, हम डंडे के जोर पे काम कराना चाहते हैं, हम धौंस और धांधली के तौर पर काम करना चाहते हैं, हम वो नहीं करते जो हमसे करने को कहा जाता है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं हमें पूरा मिले। ना दुनिया में ये दस्तूर चलता है ना आखिरत में चलता है। दुनिया में इसको कहेंगे तो इसी का नाम बेइंसाफी होगी, और ऐसी बेइंसाफी वाली कौमें कभी पनप नहीं सकती। हम अपनी जात से पूछे, जब हमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए या उसका मशवरा दिया जाए तो उस वक्त क्या हमारे अंदर रौनक तो नहीं होती? ये अंदर का तकबर जब तक नहीं मिटता ना, इंसान बाज दफा पूरा दीन सीख के भी बेदीन रहता है। अल्लाह ताला ऐसे मुजरिमों को एक ऐसी जेल में रखेगा जिसका नाम जहन्नुम है। دنیا کی جیل کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں، اللہ کی اس جیل کے بھی مختلف درجے ہیں. جو سب سے بڑا درجہ ہے، جس کو سارے درجوں کو اس کے اوپر رکھا جائے، وہ کیا ہے کہ لا یموت فیہا ولا یخشا. اس کو اگر محسوس تو کر کے دیکھیے، نہ جیے گا نہ مرے گا. دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، آخر ایک دن موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی. لیکن آخرت وہ جگہ ہے جہاں مصیبتوں کا طوفان انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوگا. اس وقت انسان بھاگ نہیں سکے گا، نہ جینا نہ مرنا. وہ کہتے ہیں نا کہ مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. ایک لمحے کے لیے اگر اس حقیقت پہ انسان غور کر لے، تو اس کی ساری لذت اس دنیا کی جو اللہ کی نافرمانی سے اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ پیچھے رہ جائے اور وہ ذائقے چکھنے لگ جائے جو ایمان کے ذائقے ہوتے ہیں. دوسری شخصیت جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں اظہار کیا، کیا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، یہ کون سا مومن ہے؟ جس کا نام عبد المومن ہے، جس کے باپ کا نام مومن ہے؟ نہیں، جس کا عمل کون سا ہے؟ آیت کا آخری حصہ ہائی لائٹ کریں گے ہم، 76 کا، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى، یہ ہے جزا اس کی جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. اپنے آپ کو پاک کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان غفلت کی زندگی کو ترک کر دے اور شعور کی زندگی کو اپنائے، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائے جو حق سے روکنے والی ہے. مصلحت کی رکاوٹ سامنے آئے تو اس کو نظر انداز کر دے، نفس کی خواہش ابھرے تو اس کو کچل دے، اور ظلم اور تکبر کی نفسیات جاگے تو اس کو اپنے اندر ہی غرق کر دے، دفن کر دے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سچے لوگ کہتا ہے، اور یہ دنیا میں ایمان کے اعمال صالح کے باغ میں رہنے والے تھے. آخرت میں یہ ابدی جنتوں میں رہیں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ان کو ہر وہ نعمت دے گا وہ جو چاہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں کر دے. دیکھیے، اپنا تزکیہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آخری پاروں میں آپ کثرت سے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو چند مثالیں دے کے سمجھاؤں گی کہ آخر تزکیہ مشکل کیوں لگتا ہے، اور تزکیہ کا عمل کیا ایک دن کا عمل ہے یا گریجولی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے.